नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में भाग लिया। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीति आयोग भारत को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है, बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। भारत ने ओमान तट पर एक जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है, जिसमें 3 भारतीय नागरिकों की जान चली गई। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। खाड़ी क्षेत्र के अपर सचिव असीम आर महाजन ने कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री महाजन ने बताया कि 24 भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जा रहे जहाज MT मारिवेक्स को 8 जून को ओमान के तट पर निशाना बनाया गया था। चालक दल के सभी सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने फारस की खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नाविकों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 % एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर बल दिया।
नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति CP राधाकृष्णन को भेजा है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। PV सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में भारत की ही ईशा रानी बरुआ और तन्वी शर्मा ने मालविका बंसोड को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।